हम लोग भगवद गीता के छठे अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। बहुत स्पष्ट है, आरुरुक्षोर जो योग के पथ पे अष्टांग योग में अभी प्रारंभिक अवस्था है उसके लिए कर्म कारणमुच्यते, कर्म कारण है। तो आप पूछेंगे कर्म कारण किसका है, तो योग का उद्देश्य क्या है, इंद्रिय निग्रह करना। तो मन को शांत करने का कारण क्या है, कर्म मतलब निष्काम कर्म। और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते, जो योग में आरूढ़ हो गया है, जिसका मन संयमित हो गया है, उसके लिए कर्म का त्याग करना कारण है। समझ में आ रहा है? तो फिर से मैं समझा देता हूं। आरुरुक्ष जो व्यक्ति योग में ऊपर उठना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म करना चाहिए, हृदय उसका शुद्ध हो जाए। योग का अभ्यास भी करे और निष्काम कर्म योग करेगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय में ठंडक आ जाएगी, मन शांत होगा, तो वह योग पद्धति में उसको फायदा मिलेगा। जो व्यक्ति योग में आरूढ़ हो गया, अष्टांग योग में आगे बढ़ गया, अब उसको निष्काम कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कर्म उसके मन में विक्षेप उत्पन्न करेगा। तो उसको भी हम कमेंट्री में पढ़ लेंगे। हम लोग इतना हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझ क्लियर रहती है ना, तो कोई कठिन अभी भी देखिए भी आ जाएगा। ठीक है, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। गीता भूषण टीका। तो प्रश्न मान लीजिए अर्जुन ये कहें कि आपने पहले बताया कि निष्काम कर्म योग जो है वह अष्टांग योग से भिन्न नहीं है, तो प्रश्न ये आता है, तो क्या एक अष्टांग योगी जीवन भर नियत कर्म ही करता रहे, निष्काम ही कर्म ही करता रहे? तो उसके उत्तर में कहते हैं, जो योगाभ्यासी अर्थात मुनि ध्यान योग में निष्ठा प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए नियत कर्म हृदय की शुद्धि के द्वारा आरोहण करने में सहायक होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, योगाभ्यास करना चाहता है लेकिन मन उसका अशुद्ध है। और आपने अगर पता हो तो छठे अध्याय को हमने चर्चा किया था कि उसके दो टॉपिक हैं, एक कि जिसका मन शुद्ध हो गया है उसको वो अपने मन को कैसे केंद्रित करे, और जिसका मन शुद्ध नहीं है वह मन को कैसे केंद्रित करे। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो व्यक्ति का मन अभी शुद्ध नहीं है, मन में अस्थिरता है, और मन की अशुद्धि है मन की चंचलता। मन की अशुद्धि क्या है, मन की चंचलता। तो अब वह मन अब चंचल है तो दिन भर बैठ करके वह अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर सकता, मन अनमना हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। एक बात ये होती है कि कोई भी साधन ऐसा कर ले हम जो हमसे संपादित नियमित रूप से ना हो तो कठिन होता है, यानी वह हमारे अधिकार से ज्यादा बता दिया गया। कई बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए सबको बोले कि आप 64 माला जप करो, तो ये कोई प्रैक्टिकल एडवाइस सबके लिए नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि 64 राउंड करना गड़बड़ है, लेकिन उसका अधिकार दिखना पड़ेगा। मान लो बहुत रजोगुणी व्यक्ति है, उससे तो 2 माला करने कठिन हो रहा है, आप कहीं 64 नहीं करोगे तो भगवत धाम नहीं जा पाओगे, तो क्या कहते हैं जाना भी नहीं मेरे को, है कि नहीं? कुछ ऐसी जान ही रहे, कोई ऐसा चीज है बताई जाए, ऐसा साधन बताया जाए जो कर सके। जैसे आप जानते हो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनको बोला गया भाई हिमालय कहाँ से, हिमालय से लाना था, गंधमादन पर्वत से लेके आना है और इतनी देर से लाना है, ऐसा समय में लाना है। तो लोग वहीं हताश हो गए कि साधन तो है लेकिन इतना कठिन साधन है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर व्यक्ति का उत्साह टूट जाता है। यहाँ पे भी आप देखो, कोई बीमारी है और कोई ऐसी दवा बता दीजिए जैसे बनाना बहुत कठिन हो, स्पेशली भक्तों को, क्योंकि हम लोग साधना वंदना करनी पड़ती है, आपको 6 बजे से पीसना पड़ेगा, उसके बाद 9 बजे फिर उसमें मिलाना पड़ेगा, तो ये नहीं कर सकते हो। तो साधना भी एक व्यक्ति के अधिकार के अनुसार बताई जाती है। तो यहाँ पे अधिकार के अनुसार अलग अलग साधना बता रहे हैं। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वह अष्टांग योग का अभ्यास तो करे, लेकिन साथ साथ उसे निष्काम कर्म योग भी करना होगा, ताकि वह धीरे धीरे हृदय को शुद्ध करे और फिर आगे वह भक्ति में आगे सॉरी अपने योग पद्धति में आगे बढ़ जाए। कई बात क्लियर हो रही है? ठीक है, माइक पूछिए। माइक
बताए थे कि अष्टांग योग में बहुत सारे लैडर होते हैं, जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम।
लैडर नहीं, अंग होते हैं।
यस
लैडर थोड़ा अलग चीज जाती है, लैडर योगा लैडर की बात करते हैं हमसे।
यस हाँ जी, तो ये डिफरेंट अंग होते हैं, तो
हाँ
शुरू के अंग में निष्काम कर्म भी जरूरी है, जब अपर अंग में वो पहुंच जाते हैं, मतलब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो फिर वो
हाँ, क्योंकि देखिए निष्काम कर्म का अर्थ क्या है, वर्णाश्रम में जो यज्ञ बताए गए हैं ये करो वो करो, लेकिन निष्काम भावना से करो, तो इससे हृदय शुद्ध होता है। तो अब जब अष्टांग योगी का मन अब जो है भगवान में ध्यान में लगने लग गया लंबे समय तक, तब उसको इस सब चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको हृदय शुद्ध हो गया तो फिर उसको सब करने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि हमने ज्ञान योग में भी सीखा था, निष्काम कर्म योग कर रहा है, लेकिन जिसकी यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, कि जिसकी आत्मरति प्राप्त हो गई, आत्मा को सुख प्राप्त हो गया, वो निष्प्रिय हो गया, उसके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, वर्णाश्रम के निष्काम भाव से भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो गया। जैसे देखिए सीधी सीधी बात है, हमने पहले भी चर्चा किया था इसकी, अगर आप भक्ति में मैपिंग करते हैं, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, सिद्धांतिक रूप से 24 घंटे भागवतम पढ़नी चाहिए और हरिनाम करने से, अगर आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार एक मैनेजर ने बोला, प्रभुपाद ये भक्त केवल हरे कृष्णा कर रहा है और कोई सेवा नहीं करना चाहता। तो प्रभुपाद बोले, अलग मूड में थे तो आंख बंद किए हुए थे, बोले चैंटिंग हरे कृष्णा इज हाईएस्ट सर्विस, और बिल्कुल सिद्धांत इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें कि सारे भक्त ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो उनको विभिन्न रूप से भगवान की सेवा में लगे। ये तो आप जानते हैं, भक्ति के किसी भी अंग को आप स्वीकार कर लो, रुचि है तो पार हो जाओगे, तो ये सिद्धांत तो ये है। लेकिन अब प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे तो प्रभुपाद जी इस बात को भी तात्पर्य में लिखते हैं कि इवन डेटी वर्शिप इज नॉट नेसेसरी, भगवान के अर्चे विग्रह की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है कलयुग में। एग्जैक्टली लिखते हैं, केवल श्रवण कीर्तन के माध्यम से व्यक्ति संतुष्ट मतलब परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि प्रचार के माध्यम से हमने देखा कि बहुत सारे हमारे जो शिष्य हैं वह उनका मन जो है अस्थिर हो रहता है, अस्थिर समझ रहे ना, मतलब उद्विग्न हो जाती है, यानी कि दिन भर लौट के माला कर लेंगे। तो फिर इसलिए हमने इस प्रकार से यह पंचरात्रि की विधि भी बनाई है, जिसके द्वारा लोग अपने मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध हो सकते हैं। मेक सेंस? देखिए ये एक माइक पे जरा पूछिए कि क्या पूछा है आपने, बोल कभी डांटूंगा थोड़ी ना, प्रश्न तो क्लियर होना चाहिए।
जैसे कि प्रभुपाद ने बोला कि हमें हमेशा भगवान को स्मरण करना है, उस स्थिति तक पहुंचना है, मतलब
और उसके बाद हम लोग प्रीचिंग करना बंद कर देंगे, ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले ये बताइए, ये गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। अब कोई कहे कि अभी हम प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे तब प्रीचिंग बंद कर देंगे। अगर हम लोग परफेक्ट हो जाएं, उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, तो हम प्रीचिंग नहीं करेंगे। देखिए अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, लोगों के जीवन को खास रिवोल्यूशन नहीं लेके आ सकते हम लोग, है ना। प्रभुपाद जी जैसे उत्तम अधिकारी जब प्रचार करते हैं, महाभागवत प्रचार करते हैं, तो वो रिवोल्यूशन लेके आ जाते हैं। नारद मुनि ने संकल्प लिया है कि कल, ये तो आप जानते होंगे, कलयुग में हर घर में भक्ति स्थापित करूं। जरा नारद जी का अधिकार के बारे में बता सकते हैं, नारद जी क्या है, कनिष्ठ अधिकारी हैं कि मध्यम अधिकारी हैं?
ये तो परमहंस स्थिति में,
परमहंस स्थिति में है। तो वो क्या कह रहे हैं, संकल्प लिया है कि तभी मैं अपने आप को सुने ना हरिदास कहलाऊंगा जब कलयुग में हर घर में भक्ति स्थापित करूंगा। जब भगवान को हम सामने देख लेते हैं, साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाता है, तब हमको प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं होती, तब आप परफेक्ट होते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ?
नहीं भाई,
गलत बोल रहे हैं,
सही है।
मैं टीचर हूँ कि आप टीचर हैं? जब भगवान को देख लिया फिर तो ना प्रीचिंग करने की जरूरत है कि नहीं?
जरूरत तो है।
नारद मुनि साक्षात भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, आप कृपया बृहत भागवतामृत पार्ट वन पढ़िए, और वरदान मांग रहे हैं भगवान से। एक तो वरदान मांगते हैं कि भगवान आपके भक्त कभी संतुष्ट नहीं हो, तो भगवान कहते हैं ये कैसा वरदान मांग रहे हो, भगवान तो ये तो भक्ति का स्वरूप ही है कि भगवान के भक्त कभी भक्ति संतुष्ट नहीं होते। और दूसरा बोल रहे हैं कि मैं आपकी, दूसरा वरदान बड़ा सुंदर है कि जो आपकी इन बाल लीलाओं को सुने उसको आपका व्रज का प्रेम प्राप्त हो, तथास्तु। और फिर कहे कि शाश्वत रूप से, इटर्नली शाश्वत रूप से मैं आपकी भक्ति का प्रचार कर सकूं। तो ये प्रीचिंग कोई ऐसा नहीं है बहुत बहुत बड़े, क्योंकि ये भगवान को बहुत सुख देता है। आप जानते हो भगवान की कृपा भक्तों के पीछे जाती है, तो यह सोचना नहीं चाहिए कि जब परिपूर्ण हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। जैसा कि तो मायावादी भी बोलते हैं कि जो है घड़ा जो होता है वो आधा भरा रहता है तो आवाज करता है, जब पूरा भर जाता है तो कोई आवाज नहीं करता। जिसके पास ज्ञान होता है वह उस बोलता नहीं फिर, ये उन लोगों की फिलोसफी है। लेकिन भक्त लोग क्या बोलते हैं, जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ता। जितना अधिक भगवान को हम समझेंगे उतना और उत्साह होता है कि भगवान के बारे में हमको वर्णन करना है। तो फोकस यही है, बस पॉइंट ये है कि जो विश्ववेदी का जो अधिकार है उसके अनुसार वह कार्य करे। तो यही बात यहाँ पे सिखाया जा रहा है, जो व्यक्ति योग में नीचे है अष्टांग योग में, उसके लिए निष्काम कर्म योग भी करना है और अष्टांग योग का अभ्यास भी करना है। लेकिन जब वो आगे बढ़ जाएगा तो उसको निष्काम कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कर्म करने में उसका जो साधना है अष्टांग की योग की वह बाधा पड़ेगी। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए हरि नाम में उसको बहुत रुचि प्राप्त है, अब कोई उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो डीटी वर्शिप करे ही। Does it make sense? Like that. लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि डेट, जैसे वृंदावन चंद महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे डेटी वर्शिप उत्तम अधिकारियों के लिए भी है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अरे डेटी वर्शिप तो केवल न्यू डिवोटीज के लिए है, लेकिन डेटी वर्शिप हाई लेवल के डिवोटीज भी करते हैं, भी कर सकते हैं। Does it make sense? बट उनका जो अनुभव है विग्रह की सेवा का, उनका अनुभव और एक नए व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होगा। भक्ति में देखिए कुछ ऐसा त्याज नहीं है, भक्ति का कोई भी अंग ऐसा नहीं कि हम उसको त्याग दें, इसको ना करें। गदाधर पंडित भी भगवान के विग्रह की सेवा करते थे, लेकिन उनको साक्षात भगवान दिखाई पड़ रहा है। तो विग्रह की सेवा तो पांच महा सेवा साधन में आती है, लेकिन बात ये हो रही है कि भक्ति में खाली मैपिंग ये है कि हमें और सारे कार्य भी करने होते हैं, कि एक ही कार्य में सबको बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होता है। तो विभिन्न विभिन्न कार्यों के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाए रखते, ये सिद्धांत है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अष्टांग योगी जो व्यक्ति है वह वर्णाश्रम कर्मों को कर रहा है एक साधन के रूप में, बाद में उसे त्याग देगा। आप लोगों को पता है कि ज्ञानी भी क्या करेगा, जो साधन कर रहा है वो त्याग देगा एक बार वो मुक्त हो जाए। तो कुछ कहना चाहते हैं? यस बताइए।
ट्रांसलेशन और वर्ड टू वर्ड मीनिंग से कर्म मतलब लग रहा है वर्णाश्रम के कर्म, सिर्फ कर्म योग नहीं, मतलब निष्काम कर्म योग जैसा नहीं लग रहा है।
देखिए निष्काम कर्म ही बार बार, कर्म का मतलब है निष्काम कर्म ही साधन हृदय को शुद्ध करने वाला होता है। कंटेक्स्ट में देखिए ना, अभी तक तो यही चर्चा चलती आई है।
पिछले दो श्लोकों में कर्म भी तो शुद्ध करते हैं इनिशियल फेज में।
आप समझिए मेरी बात, निष्काम कर्म और वर्णाश्रम धर्म के कर्म में क्या अंतर है?
बहुत अंतर है
बताइए।
वर्णाश्रम से, वर्णाश्रम का मतलब वो फल होगा कि निष्काम कर्मयोग पे लीड करे वर्णाश्रम
निष्काम कर्म करते। ये अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। निष्काम कर्म में व्यक्ति करेगा क्या?
वो तो वर्णाश्रम के कर्म करता है मगर मेंटालिटी डूअरशिप का नहीं रहता, उसके फल
की प्राप्ति आसक्त नहीं रहता। तो यही पिछले दो श्लोकों में हमने देखा था ना, निष्काम कर्म जो है वह हमारे हृदय को शुद्ध करता है। तो जिसने व्यक्ति ने निष्काम कर्म के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया है वह अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर सकता। ये तो बात भगवान बता रहे हैं। तो जब भी यहाँ पे साधन के रूप में बात हो रही है तो निष्काम कर्म की बात हो रही है। केवल सकाम भावना से तो भगवान इसको उसको गर्हित माने हैं ना। आपने क्या है वो दूरे नहीं, नहीं नहीं ये किम कर्म किम अकर्म इति कवियो पितृ मोहित ऐसे कर श्लोक था ना, कर्म अकर्म विकर्म इसके बारे में बात हुई थी ना। विकर्म को बोला गया था कि जो भोग की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं वो विकर्म है, तो उसको साधन कैसे मान सकते हैं? तो यहाँ जो कर्म की बात बड़ा स्पष्ट है निष्काम कर्म के बारे में। अब अगर आप कमेंट्री देखेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि निष्काम कर्म के द्वारा शुद्ध होता है।
साइड का क्वेश्चन, जो निष्काम कर्मियों का जो परफेक्शन है तो वो लिबरेशन मतलब मोक्ष है।
यस।
और ज्ञान का भी जो परफेक्शन है मुक्ति।
यस।
अष्टांग योग का भी जो परफेक्शन है
मुक्ति है।
मुक्ति है तो फिर उसको करना और त्यागना मतलब,
हाँ अगर अगर आपने अगर पढ़ा होता तो पांचवें अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि जब निष्काम कर्म किया तो उसकी वजह से उसको आत्मा का सुख प्राप्त होने लगा। अब उसको और इंटेंसिफाई करने के लिए अष्टांग योग लेके आ रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो
ऑप्शनल है जैसे कि निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग जाना, देखिए ऑप्शनल है ना।
हम लोग केवल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम समझें कि हमें ये करना नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसका बहुत एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बच्चों में जितना कमेंट्रीज में रखा गया उतना करना है। आप प्रभुपाद जी भी देखिए कि तात्पर्य में क्या करने वाले हैं, समझाएंगे बाद में कहेंगे भक्ति करने वालों इसको करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज अ पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेक, मतलब है भगवद गीता में भगवान ने इसीलिए क्यों बताया, करना चाहते हो सारे प्रोसेस को देख लो कर लो, लेकिन ये नहीं कह रहे कि अष्टांग योग करो। भगवान की भक्ति थोड़ा से प्राप्त हो जाएगी अष्टांग योग से, केवल अष्टांग योग से, जब तक भक्ति का सम्मिश्रण नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए कोई अष्टांग योग ना भी करे तो हमने पढ़ा था कि निष्काम योग कर्म से, कर्म योग करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो भी ठीक है। लेकिन उसमें जो लिंक बताया जा रहा है वो ये है, आपने अगर पढ़ा हम लोग पांचवें अध्याय के आखिरी 27-28 श्लोक में देखा था कि एकाग्र करने के लिए जो योगा लैडर की बात की जाती है, निष्काम कर्म किया उसके बाद ज्ञान योग हुआ, फिर ज्ञान योग को और इंटेंसिफाई करने के लिए अष्टांग योग किया था, फिर जाके वह आगे भक्ति में भक्ति योग करने का अधिकारी बनता है। So just a matter of intense purification, अपने अगर वो करना चाहता है, अब यह तो हम नहीं कह सकते कि अष्टांग योग करके सिद्धि प्राप्त करेगा, बट कठिनाई यंत्र ये है कि हम भक्ति के बारे में खूब सुनते हैं, विचार करते हैं और करते हैं। अब इस इन सारी योग पद्धतियों में हमें ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग उसको साधना करते नहीं है। एक एक लाइक आपको एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए, और अब जो इस अष्टांग से कुछ काम की चीजें वो हम ले लेंगे, बस ये बात है। बाकी आप देखो बार बार प्रभुपाद जी भी मैपिंग करते हैं, हम भी इसको मैपिंग कर रहे हैं, भक्ति में हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं मेरी। बाकी मैं मेरे पास इतने, मैं तो कभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैं अष्टांग योग का मतलब सारा कुछ समझता हूँ, कैसे यम नियम क्या कुछ, लेकिन जैसे इसमें बोलेंगे बैठ अच्छे से बैठो तो हम उसे के हाँ जप में कमें कम से कम अच्छे से बैठ के जप करना है, तो इतना तो हम सीख सकते हैं। अब ये नहीं कि हम आंखों के यहाँ पे बीच में रख करके अपने आंखों को केंद्रित करेंगे, वो सब चीज नहीं करेंगे। सो वट एवर इज हमारे जो काम का है वो हम ग्रहण कर लेंगे। डिटेल्स बताने की मेरी क्षमता नहीं है क्योंकि मुझे उसका एनालिसिस नहीं किया बहुत, बट ये मैंने देखा था कि जब ज्ञान योग में अपने मन को और केंद्रित करना होता है तो अष्टांग योग का व्यक्ति आश्रय लेता है, ना समझ सकते हैं। आप भी करने वाले हो क्या अष्टांग योग कि नहीं? तो इट्स जस्ट लाइक
एक व्यू है, लाइक वर्णाश्रम के कर्म करने से गुडनेस बढ़ेगा तो चित्त की चंचलता दूर होगी, निष्काम कर्म योग से इनिशियली गुडनेस बढ़ेगा,
यस,
मगर यहां
पे लेकिन अष्टांग योग के द्वारा वो जो चित्त थोड़ा सा एकाग्र हुआ है उसको और एकाग्र करने में फायदा मिलेगा, बस ये बात हो सकती है। भाई आप जब कैसे भी करो तो फायदा ही तो होगा, लेकिन अगर आप बढ़िया से बैठ के जब करेंगे तो थोड़ा और फायदा हो जाएगा, तो इस तरह से आप ले सकते हैं बस। सो थोड़ा जो हमने अभी तक लास्ट में मैंने जो समझा पढ़ा वे था कि अपने मन को और केंद्रित करने के लिए अष्टांग योग का सहारा ले रहा है, दैट्स उसका मन शुद्ध हुआ है, अब वह और इंटेंसली मतलब करना चाहता है अपने मन को केंद्रित परमात्मा में, तो अष्टांग योग का सहायता ले रहा है, दैट्स अभी तक मैं यही समझ पाया हूँ, आप देख लीजिएगा और कुछ समझ में आते हैं। जो ध्यान निष्ठ है उसके लिए नियत कर्मों का त्याग ही दृढ़ता का कारण बनता है, क्योंकि यह कर्म ध्यान में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। मतलब अब जिसका ध्यान भगवान में लगने लग गया है और वह सोचे कि इन कार्यों को करे तो उसमें विक्षेप आएगा, विक्षेप मतलब उसके ध्यान में विक्षेप आने वाला लगता है। एक कमेंट है लेकिन अब मुझे उसको रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तात्पर्य पढ़िए प्रश्न आपका, यस हाँ ऑन ऑन है क्या? हाँ
आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हाँ। तो मैं बीच बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मींस के निष्काम कर्म में कम मीनिंग क्या होता है कि हम फल के बारे में सोचे भी नहीं, तो वही निष्काम कर्म हो गया?
नहीं नहीं देखिए निष्काम कर्म कोई भी आप कर्म करते हैं तो ऐसा नहीं कि फल के बारे में नहीं सोचते, कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं होता है, लेकिन निष्काम कर्म करते होता है। देखिए इस जगत में आप कुछ यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका उद्देश्य कुछ भौतिक लाभ भी प्राप्त करना होता है कि पुत्र मिल जाए, पत्नी मिले या सम्मान मिले, यह सब भौतिक लालसाएं होती हैं। जैसे अभी आपको आप आईएएस कितनी देर, आधा घंटा तो पढ़ते होंगे, ज्यादा पढ़ते हैं, दो घंटा पढ़ते होंगे, माइक पे बोलिए कितने घंटा पढ़ते,
डिपेंड करता है कभी 8-10 घंटे,
बस ज्यादा नहीं 10 घंटे। तो जो आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं वो पढ़ना अच्छा लगता है, माइक पे बताइए।
यस कभी कभी नहीं लगता है, और
नहीं फिर भी पढ़ते हैं कि नहीं?
यस पढ़ते,
क्यों पढ़ते हैं?
क्योंकि बनना है, यस
आईएएस बनना है, समझ में आ रहा है, तो इसी से ऐसी मैपिंग करेंगे समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि आपको फ्यूचर में आईएएस का पद अच्छा लग रहा है इसलिए आप वो कार्य भी 10 घंटे के लिए करना चाहते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह हो गया सकाम कर्म। मैं कुछ निंदा नहीं कर रहा हूँ, सकाम कर्म मतलब आईएएस बनूंगा, आईएएस बन के पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा, लोग रिकग्निशन प्राप्त करेंगे, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, आई डोंट कंडेम इट, ठीक है ऐसा। उसी प्रकार से एक वैदिक सभ्यता में व्यक्ति कुछ यज्ञ करता है, तपस्या करता है, दान करता है ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, या इस जगत में पत्नी मिले, पुत्र मिले, इस प्रकार से, तो यह हो गया सकाम कर्म, समझ में आ रहा है। लेकिन जब व्यक्ति समझ जाए कि भाई इस जगत की किसी भी स्थिति से मैं सुखी नहीं हूं, तब वह निष्काम कर्म करता है, मतलब यज्ञ करता है, दान कर, यज्ञ समझते हैं, यज्ञ करता है, दान करता है, दान भी समझते हैं, और तपस्या भी करता है, लेकिन किस लिए? ताकि उसके हृदय की शुद्धि हो जाए, तो उसको निष्काम कर्म करते हैं। काम तो वही है लेकिन वह है निष्काम कर्म हुआ क्योंकि उसे हृदय की शुद्धि हो जाए। अब आईएएस की तैयारी निष्काम भावना से कैसे कर सकते हैं ये मैं नहीं जानता, देंगे आईएएस ऑफिसर देंगे ये एक बस मैं कुछ कह नहीं सकता कि आईएएस की तैयारी को वैदिक में समझाया नहीं गया है और ये वैदिक तरीका भी नहीं है, तो इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ये निष्काम कैसे होगा। बस ये हो सकता है कि अगर आईएएस कोई बने और उसके बाद उसके पास कोई पावर आती है, पोजिशन आती है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाए, तो उस प्रकार से हम निष्काम हो सकता है या इसको निष्काम बनाया जा सकता है। निष्काम है तो नहीं, आईएएस कौन बनना चाहता है भगवान की सेवा करने के लिए? भगवान की सेवा बन करने के लिए आईएएस बनना जरूरी थोड़ा ना, और जरूरी भी नहीं कि आईएएस बने, ठीक है। लेकिन मतलब अगर चाहता है इस प्रकार से, तो अगर कुछ प्रभुपाद जिसको बोलते भी हैं एक जगह कि उसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है उसका उपयोग भगवान के लिए करता है, तो वह भी भक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं पावर और पोजिशन की इच्छा तो है हमारे हृदय में, और ये कोई मतलब हम इतना निंदनीय नहीं कहेंगे। भगवान का नाम जब करेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दिक्कत ये होती है कि जब इस तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, कुछ मिलती, तो व्यक्ति भक्ति को भूल जाता है, ये कठिनाई है। तो लेकिन निष्काम कर्म की बात यही है कि व्यक्ति अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए वो कार्य करे, ठीक है। तो बात यहाँ पे आ रही है कि जब व्यक्ति ध्यान में निष्ठ हो गया, तो फिर उसके लिए अब उसका मन ध्यान में लगने लग गया, तो फिर ये है जो वर्णाश्रम इत्यादि के कर्म है वो उसके लिए बाधा देंगे। तो ये कौन सा व्यक्ति है जो योगारूढ़ है, योग में स्थित हो गया? तात्पर्य पढ़िए।
परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है, सॉरी, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के,
एक सेकेंड, मैं आपके पॉइंट को फिर से एड्रेस करना चाहता हूँ। कर्म कारण मुच्यते, जब बोल रहे हैं कि कर्म कारण उच्चते, तो किसके लिए बोल रहे हैं? जो अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो वह सकाम कर्मी कैसे हो सकता है?
सकाम कर्मी नहीं, जस्ट प्रिस्क्राइब वर्ड कर रहा है गुडनेस को बढ़ाने के लिए,
समझे मेरी बात? संध्या बंधन है ये, नहीं समझ गया। लेकिन यह जो व्यक्ति है यहाँ पे, तो अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है। आरुरुक्ष मतलब अष्टांग योग में प्रवेश करना चाहता है, ऑलरेडी ही इज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। अगर आप देखें तो ऑलरेडी उसके हृदय में मुक्ति प्राप्त की इच्छा ये वो है, तो वैसे ही वह सकाम कर्म को तो साइड में हो गया, केवल वर्णाश्रम के कर्म की बात नहीं हो रही है। वर्णाश्रम कर्म को निष्काम भाव से करने की अंडरस्टैंडिंग तो उसकी पहले से ही होगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मन अभी चंचल है, लेकिन मन को शुद्ध करना है। तो जब मन को शुद्ध करना है, तो ये भावना तो स्पष्ट है कि मुझे कार्य भगवान, जैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं अब दिन भर जब नहीं कर सकता, ये मेरी योग्यता नहीं है, एकदम अपनी चेतना को मैं देख रहा हूँ, दिन भर बैठ के भागवत भी नहीं पढ़ सकता, तो मैं प्रैक्टिकल सेवा कर रहा हूं ताकि मेरा मन की चंचलता और निष्काम भावना से करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो और मैं एक दिन ऐसी स्थिति में आ सकूंगा जिसमें दिन भर बस हरिनाम और भागवतम और इसके अलावा और कुछ ना करूं, या प्रचार इसके अलावा और मैं कुछ ना कर सकूं। मीन्स अब समझ पा रहे हैं कि आपका माइंड जान रहे हैं कि माइंड आपका लाइक वो रहता है फ्लिकरिंग है कुछ है, तो एटलीस्ट 9 से 5 का समय किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में लग जाए। शाम का समय मुझे बहुत अच्छा लगता है भागवत पढ़ने में, गीता पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब मुझे पता है कि मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है, दैट इज वेरी क्लियर। इन सेवाओं को हम केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे हीरो बनना है, सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, दैट इज अ पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सोचने लगते हैं हम दूसरे का उद्धार करने के लिए प्रीचिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम अपना शुद्धिकरण करने के लिए प्रीचिंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज अहंकार आ जाता है। हम किसी का उद्धार नहीं कर रहे, हम केवल अपना उद्धार करने के लिए प्रीचिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट इन आवर स्टेज। हम करुणा के लिए भी नहीं कर रहे, वी सिंपली वांट टू प्लीज श्रील प्रभुपाद और हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं लगता, ये भी अच्छा तो लगता है प्रीचिंग करना, लेकिन हम किसी को उद्धारक नहीं है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। भले वो आपको अपना उद्धारक माने, लेकिन आपको नहीं मानना चाहिए कि आप किसी को उद्धारक है। डज इट मेक सेंस? तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैं वृंदावन चंद महाराज को बोला हमारा सिद्धांत तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, लीला उतना हम जो है अप्रिशिएट नहीं कर पाते, तो महाराज बोले अरे वही सिद्धांत से ही लीला समझ में आएगी। अब देखो जैसे गीता समझ में बड़ी आसानी से आती है, लेकिन अब चैतन्य चरितामृत के कुछ प्रसंग हैं जो बड़े कठिन पड़ते समझने में, मतलब ना जिसमें भगवान राधा कृष्ण की अंतरंग लीला का वर्णन है, तो वहीं दिख जाता है कि अभी हमारी योग्यता, मेरी एटलीस्ट मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी योग्यता नहीं उसको समझने की। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गड़बड़ है, ये तो कहने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन मेरी योग्यता नहीं है समझने की, यह समझ लेना चाहिए। तो बड़े धैर्य के संग आप गीता पढ़िए, उसको समझिए, भागवतम पढ़िए, समझिए, सिद्धांत समझिए, जिस दिन आपकी योग्यता हो जाएगी आप अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप आकर्षण लगेगा उन वस्तुओं के प्रति। डज इट मेक सेंस? ये बहुत गंभीर बात है। जैसे जैसे प्रगति करेंगे, जो ज्ञान आप, जिस ज्ञान के आप योग्य हैं, उस ज्ञान को भगवान स्वयं प्रकट करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कब मैं लीला का रसिक बनूंगा, कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं, जंप करने की जरूरत नहीं है। अपने आप प्रगति करते जाइए, अपने आप आपको समझ में आने लगे। पढ़िए
यह सीढ़ी
जीव की। एक प्रश्न सोचिए, अभी जो व्यक्ति योग में ऊपर उठ रहा है और जो व्यक्ति योगारूढ़ है, क्या उसको खुद नहीं मालूम चल जाएगा? जब उसका मन भगवान के ध्यान में लगने लगा तो वर्णाश्रम के जो कर्म है उसको छोड़ने नहीं होते, वो छूट जाते हैं। आप कहो कि भाई भक्ति कर रहे हैं, जगत छोड़ना पड़ेगा, वो जगत छोड़ना नहीं पड़ेगा, जगत छूट जाएगा। परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज इसको अच्छा बोलते थे, कर्म छोड़ना नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं। जैसे हमारे प्रभु जी, आपने जैसे घर परिवार छोड़ा तो अपने दुख का वर्णन करें, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। यू डोंट फील सेपरेशन फ्रॉम योर फैमिली, बहुत दुख हो रहा है?
नहीं
नहीं, लेकिन अगर 5-6 साल पहले जब आप घर में थे तब आपको बोल देते कि छोड़ो, तब अब आप समझ में आपका अधिकार में परिवर्तन आएगी नहीं? नाउ बुरा मत मानिएगा, बट नाउ यू आर रियलाइजिंग हाउ यू आर मिजरेबल इन मटेरियल लाइफ। लेकिन जब व्यक्ति को बोल, अरे अब मान लो जैसे आपकी शादी हुई थी, तुरंत बोलते हैं छोड़ दो, अरे क्या कर रहे हो भैया, शादी कैसे कहते छोड़ दो, कहते छोड़ दो। आप कैन यू सी इन योर कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट criticizing or anything like that, just see कि जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मेरे सिलेक्शन हुआ IIT में, तभी प्रभु जी बोल रहे थे इससे कुछ नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर मैं हाँ बोलते, लेकिन कुछ अंदर से सुनते नहीं है। आपको याद है सब बातें चर्चा हो चुकी है, लेकिन जब मैं प्रवेश किया IIT में तो मैं कह रहा क्या ये फालतू चीज। सो द जो हृदय शुद्ध नहीं होगा ना, तो कितना भी आप ज्ञान दीजिए समझ में नहीं आया उसको। तो इस नेचुरल प्यूरिफिकेशन इज नीडेड, हरि नाम करे, भक्ति करे, देन यू अंडरस्टैंड दिस प्लेस इज नॉट गुड and also I'm suffering, ये बात समझ में आने लगती है। तो ये चीजें वो उसको अपने आप ही अनुभव होने लगता है, फिर वो अपने आप ही सेलेक्ट करने लगे कि हाँ ये बातें बोलेगा मुझे, ये करना ऐसे करके। पढ़िए, आई होप मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ मैं क्या चाहता हूँ। ठीक,
हाँ। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग।
बड़ा स्पष्ट हो रहा है, क्लियर है? हाँ जी।
सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योग रुरुक्षु अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियम तथा आसन जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियाएं बस में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं।
श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं कि यहाँ कर्म का अर्थ श्रील प्रभुपाद क्या ले रहे हैं, जो शुरुआत के यम नियम ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि है, जिसके द्वारा मन को संतुलित किया जाता है, वह उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब उसका मन शांत होने लगा तब उसको प्राणायाम इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, मन अपने आप भगवान में जा रहा है। जैसे कि हम लोग भक्ति में भी सीख रहे हैं, हरि नाम करते समय आपको हरि नाम में अगर रुचि है तो कोई सेमिनार की जरूरत है? रसगुल्ला खाने के सेमिनार आपने कभी सीखे? बनाने के सेमिनार हो सकता है, खाने का सेमिनार हुआ कभी? टेस्ट लेट के खाएंगे और बैठ के खाएंगे, दोनों में किसमें अधिक टेस्ट लगेगा? दोनों में एक लगेगा। समझ रहे हैं? रसगुल्ला खाया कैसे जाए, उसकी कोई सेमिनार नहीं, कोई क्या एटीट्यूड, कुछ भी नहीं, स्वाभाविक रुचि है। अब अगर हमारी पूर्व जन्म से ऐसी संस्कार है, शुद्ध है, नाम रुचि अपने आप प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं है तो फिर हमको अब अभ्यास करने की जरूरत है कि बैठ के करें और बढ़िया से करें, ध्यान पूर्वक करें, उच्चारण पर ध्यान दें, ऐसे बातें हैं। पढ़िए।
किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं।
पूरे अध्याय में आप अष्टांग योग में प्रभुपाद जी कंक्लूड करके अष्टांग योग को लेफ्ट राइट कर देते, साइड में रख देते, और मेन बात यह है कि भगवान की भक्ति करनी है और बहुत सहज है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो कार्य करना आपको अच्छा लगता है, पाप कर्म ना हो, अच्छा सामान्य से कार्य है, और उसे अगर हम भगवान की सेवा में समर्पित कर दें तो फिर जो है वो बड़ी आसान हो जाता है मन को कंट्रोल करना। ये बातें तो सब तक समझ में आने लग गई होंगी ना। हर व्यक्ति का यहाँ पे अलग अलग गुण है और उस टैलेंट को अगर भगवान की सेवा में लगाएं तो बहुत सहज हो जाता है भक्ति, क्योंकि अल्टीमेटली आध्यात्मिक जगत में जाके आपको अष्टांग योग नहीं करना है, ज्ञान योग या निष्काम कर्म योग नहीं करना है, भक्ति योग ही करना है। तो वो सहज है, मतलब जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं उनको रोकना नहीं, खाली भगवान की तरफ मोड़ना है। बात कई बार सुन चुके हैं बट इट्स समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, कुछ आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं करना। लेकिन इन सब चीजों को हम तब कर पाते हैं ठीक से जब हमारा श्रवण बहुत पक्का होता है। ये मैं बहुत अनुभव कर रहा हूं, किसी भी कार्य को, भक्ति के कार्य को हम कर रहे हैं उसके पीछे जो एटीट्यूड है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, समझते हैं, मनोवृत्ति, और उस मनोवृत्ति का निर्माण करता है श्रवण, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का श्रवण। अन्यथा सब कुछ वो मेन जो मनोवृत्ति है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है। आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे किसी भी कार्य को कर रहे हो, चाहे जप कर रहे हो, चाहे भगवान की सेवा कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छे से तब समझ में आता है। एक श्लोक क्या हम और कर सकते हैं या okay. या yeah.